मां हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय जय प्रभु पा प्रभु पा प्रभु पा प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिगाचार अष्टोत्तर अष्टाही डिवाइन ग्रेस एसी भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की इस्कान फाउंडाचार्य श्री धवल जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिपकाचार अष्टोत्तर अष्टाही डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सद्गुरु गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णवंद की नामाचार श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौर भक्तविंद की श्री गौनिताय की श्री राधा राधिका रमण भगवान की कृष्ण बलराम भगवान की जगन्नाथ बुद्धेश्वरोत्तम या की ग्रंथासन भागवतम की इस्कान पंजाबी बाग भक्तवृंद की टाइगोर प्रमाण आल गुरी समल डिवोटिस आल गुरी समल डिवोटिस आल गुरी समल डिवोटिस आल गुरी श्री गुरु एंड गौराम हरे कृष्णा। तो इस समय पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन किया जा रहा है और भगवान की जो लीलाएं हैं ये शुरू से चला रहा है। त्रेता युग में तो भगवान राम लीला स्वयं लीला कर रहे थे लेकिन द्वापर युग में भी जितने ब्रजवासी हैं सब लोग हर जगह लीला होती थी। कलयुग में लीला चली जा रही तो त्रेता युग से ही राम की लीलाओं का क्या हो रहा है मंचन किया जाता है। तो इसीलिए हम भगवान राम की लीलाओं का कुछ वर्णन करेंगे। इस संसार में विशेषकर वर्तमान युग में लोग क्या चाहते हैं कौन बताएगा? राम राज चाहते हैं। क्या चाहते हैं? राम को नहीं चाहते। राम जो शिक्षा देते हैं इनसे से कोई लेना देना नहीं लेकिन राज कैसा चाहिए? राम जैसा। तो कैसे आएगा? इसी पर एक बहुत बढ़िया श्लोक है प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। ये अध्याय 9 स्कंध 9 अध्याय 10 का 51 श्लोक है भगवान रामचंद्र की deny. यही श्लोक हम लेंगे। श्लोक इस प्रकार है, त्रेतायाम वर्तमानायाम कालह कृत समोभवत रामे राजानि धर्मज्ञे स्वर्भूत सुखावहे। इसका अनुवाद ध्यान सुन गए। भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने थे, किंतु उनकी सरकार अच्छी होने से वह युग सतयुग जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। तात्पर्य ध्यान सुन गया, चारों युगों में से कलयुग सबसे निकृष्ट है, किंतु यदि वर्णाश्रम धर्म की विधि लागू कर दी जाए तो इस कलयुग में भी सतयुग जैसी परिस्थितियां लाई जा सकती हैं। हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी प्रायोजन के निमित्त है। कलौ दोषे निधे राजन हस्ते युको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। हे राजन, यद्यप कलयुग में दोषों से पूर्ण है, फिर भी इस युग में एक उत्तम गुण यह है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके मनुष्य भवबंधन से छूट सकता है और दिव्य धाम को जा सकता है। यदि लोग हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन के इस आंदोलन को स्वीकार कर लें तो वे अवश्य कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाएंगे और इस युग के लोग सतयुग जैसा ही सुखी हो सकेंगे। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहकर इस हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण कर सकता है। उसे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, विधि विधानों का मानना तथा पापी जीवन के कलमश से मुक्त होना होगा। यदि कोई पापी जीवन को तुरंत नहीं छोड़ सकता, किंतु यदि वह भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो वह अवश्य ही सारे पापमय कर्मों से छूट जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यह भगवान रामचंद्र का आशीष है कि वे इस कलयुग में गौर सुंदर रूप में प्रकट हुए हैं। और आप सबको मालूम है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपना षड्भुज रूप भी दिखाया है, तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान राम की जो लीलाएं हैं भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी इसका मंचन किया जाता है। कई ऐसे देश हैं जहां पे भगवान राम की लीलाओं का मंचन किया जाता है और कई देशों में उनकी भाषा में रामायण ग्रंथ भी लिखे गए हैं। लेकिन सबसे पहले किसने लिखा? वाल्मीकि जी ने संस्कृत में। ये पूरा संस्कृत में ही लिखा था। उसके बाद कई आध्यात्म रामायण, कुछ 24 प्रकार के रामायण हैं, बहुत रामायण हैं, और तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में, उड़िया भाषा, बंगाली भाषा में, हमारे हर स्टेट की अपनी अपनी भाषा में अलग अलग लेखकों ने भगवान का क्या किया है, गुणगान किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अवधी भाषा में, लेकिन मूल क्या है, वाल्मीकि रामायण। लोगों ने क्या किया, उसको पढ़ा, फिर अपनी भाषा में बड़े सरल ढंग से लिख दिया, तभी ये जन जन तक पहुंच गए। प्रभुपाद जी चाहते थे कि जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस घर घर में मिलेगा, ऐसे हमारी गीता एज इट इज भी पहुंचनी चाहिए, ऐसा प्रभुपाद घर घर। और राम कथा ऐसा है कि आप कहीं भी चले जाइए, आप दिल्ली के रिक्शा वाले से, कुली से, किसी से आप भगवान के बारे में बताएंगे, वो 2-3 स्टोरी सुना देगा। राम की कथा इतनी लोकप्रिय, लोग कब से, त्रेता युग से ये लीला लोग देखते आ रहे हैं, और अभी भी लीला हो रही है, लेकिन इसका प्रारूप अब थोड़ा कॉमर्शलाइज्ड हो गया है। अब तो रामलीला दिखने जाइए तो डांस ज्यादा, झूला, चाट पकौड़ा, ये सब पूरा मेला लगा रहता है, और किसी का रामलीला देखने मन नहीं लगता है, राइट? पता नहीं लोग क्या खाने का इतना शौक है, कि कितना खाते हैं, घर में भी खा रहे हैं, वहां भी खा रहे हैं, वहां भी खा रहे हैं, रामलीला देखे वहां भी खा रहे हैं, अब बीमार भी हो रहे हैं, क्या स्थिति खराब। तो राम की जो लीला है वो हम सब लोग गंभीर नहीं है, ये कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अरे तो थे तो कुछ गुण तो तुम्हें भी अपनाना चाहिए, है ना? भगवान जो लीला करते हैं, शिक्षा देते हैं, किसके लिए, हमारे लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए, भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया, इतनी सुंदर लीलाएं की, तो किसके लिए लीलाएं, हमको एक शिक्षा लेने के लिए। तो कोई शिक्षा नहीं लेना चाहता, कोई सुधरना नहीं चाहता, बस मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जय श्री राम बोलेंगे। भगवान राम को नारों में बांध दिया है, करना कुछ नहीं, आचरण कुछ नहीं करना। इसलिए हमारा देश जो है गर्त में जा रहा है, विशेषकर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशा में लिप्त हो रही है। इसलिए आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, नशा मुक्त भारत, किसके द्वारा, इस्कान के द्वारा, जिसका नाम क्या है, उद्गार। सब में लिप्त हैं, पूरे विश्व के लोग शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, लेकिन जो आनंद के आगार हैं उनके अनुसार चलना नहीं चाहते। देखिए भगवान राम के कितने गुण हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान राम जब राजा बने तो अपने व्यवहार से, आचरण से सबका दिल क्या कर लिया, जीत लिया। इसलिए क्यों, स्वयं भगवान है और परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, तो वो अपने गुण व्यवहारिक ढंग से, क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण ही राम के रूप में आए, भक्तों के समना चाहिए, भगवान कृष्ण अपने चतुर्व्यूह जो है वही उन्हीं का विस्तार है, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऐसा है। तो अपने व्यवहार से कि एक मनुष्य का व्यवहार, जीवन कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा किसने दिया है, भगवान राम। इसलिए हम उनके गुणों का ही चर्चा करेंगे, वो गुण हमें अपनाना चाहिए, शिक्षा हमारे लिए दिया हुआ है कि हमें भी ऐसा कार्य करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। यहां प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान रामचंद्र त्रेता युग राजा बने थे, किंतु उनकी सरकार अच्छी होने से वह युग शत्रुग जैसा था, प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। उनकी सरकार अच्छी थी, क्यों अच्छी थी कि स्वयं सरकार भगवान कृष्ण क्या है, वो स्वयं सरकार है। जब भगवान स्वयं राजा बन जाए तो सरकार तो अच्छी होगी कि हमारी सरकार ही सरकार है, भगवान है। तो ऐसा तो भगवान कृष्ण और भगवान राम यही चाहते थे, उनकी इच्छा यही थी कि जो राजा हो वो धर्म परायण होना चाहिए। अगर राजा खुद धार्मिक नहीं है, उसका आचरण व्यवहार सदाचार नहीं है, तो प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। इसीलिए भगवान श्री राम इस धरती पर आए क्यों आए, इसीलिए कि रावण भी एक राजा था। कहां का राजा था? लंका का राजा था। वो कैसा राजा था? नंबर एक का चरित्रहीन, राक्षसी स्वभाव वाला था, तो पंडित ब्राह्मण लेकिन मांसाहारी था। खरी कलयुग में भी ब्राह्मण मांस खाने लगे हैं, खाते नहीं खाते? खाते हैं, अच्छी तरह खा रहे ब्राह्मण लोग, पंडित लोग है ना, पंडे लोग ये सब लोग नशा करते हैं, है ना, लहसुन प्याज भी खाएंगे, नशा भी करेंगे, है ना, भांग छानेंगे, है ना, कथा भी सुनाएंगे, कई प्रकार के। आप मधुबनी गोरम चल जाए, बड़े बड़े ब्राह्मण जो हैं सब मांसाहारी हैं। यूपी बिहार चल जाए सब मांसाहारी ब्राह्मण लोग। आप सुन, क्योंकि रावण ब्राह्मण था, विद्वान था, लेकिन फिर भी क्या था? पापाचारी था। उसका आचरण व्यवहार ब्राह्मण जैसा नहीं था, जबकि राजा था। और अपने इसी व्यवहार के कारण उसने देवताओं से लेकर के ऊपर लोग से लेकर के नीचे तक धरती के सब लोगों को क्या कर रखा था? नाक में दम रखा था। कोई साधु संत मठाधीश है ना, कोई तपस्या नहीं कर पा रहा था। विश्वामित्र जैसे लोग तपस्या नहीं कर पा रहे थे, मारो स्वभाव जाते थे, हड्डियां डाल देते थे, ऐसे मटके में खून गिरा देते थे, यज्ञ होने नहीं देते थे। चारों तरफ देवता लोग परेशान थे, पृथ्वी परेशान थे, सब लोग परेशान थे। तब किसके पास गए? भगवान के पास। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि देव देवी देवी होती हैं, देवता देवता होते हैं, भूत भूत होते हैं, प्रेत प्रेत होते हैं, पितर पितर होते हैं, गंधर्व गंधर्व होते हैं, किन्नर भी होते हैं, मनुष्य मनुष्य होता है, पशु पशु होता है, पक्षी, सबका अपना अलग अलग स्थिति है। ये नहीं कि सब भगवान है। ये जो फिलॉसफी चल रही शून्यवादी के मायावाद के, बहुत गलत है। तुम भी भगवान, हम भगवान, सब भगवान। और इस कलयुग में इतने भगवान प्रकट हो गए हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जिसको देखो उसी को भगवान मान लेते हैं, गलत है, ये गलत है। तो सब लोग मिल करके किसके पास गए? भगवान के पास। प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, शंकर जी ने प्रार्थना की, पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके सब जाके प्रार्थना की कि हे भगवान मुझ देवताओं की रक्षा करो। अब देवता लोग अपने मुंह से अपने आप को क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? देवता बोल रहे हैं। देवता लोग क्या बोल रहे हैं अपने आप का? कि मुझ देवताओं की आप क्या करिए, रक्षा करिए। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। अपने क्या बोल रहे हैं? देवता। लेकिन इंसान इतना अज्ञानी है कि जो लोग देवता अपने आप को देवता बोल, उनको भगवान बनाता है। वाह रे, इंसान बड़ा विचित्र मनुष्य है, बड़ा विचित्र जानवर है। दो पग पशु धर्म बिना नरह पशु बना, एक किसी को भी कुछ बना सकता है। इतने स्थिति खराब है। कहते ना कि काम लगने पर इंसान गधे को भी मामा कह सकता है, है ना? अपना स्वाद पूरा करने के, स्वाद पूरा कर ले, गधे के बाप कहेगा, आ ही मेरी माई बाप है, तो मेरा एक काम कर दीजिए, ऐसा बोलेगा। इंसान बहुत विचित्र है। तब भगवान ने कहा कि हम आएंगे, मनुष्य के रूप में प्रकट होंगे, और किसके यहाँ आएंगे? महाराजा दशरथ के यहाँ। सेलेक्ट किया उन्हें। और तब महाराज दशरथ, कथा चूंकि सबको मालूम है, आए भगवान, प्रकट हुए चारों भाई। अब प्रकट होने के बाद भगवान ने अपनी दिव्य लीलाएं शुरू की। भगवान सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करते थे? अपनी माता को प्रणाम करते थे, पिताजी को प्रणाम करते थे, धरती माता को प्रणाम करते थे, और गुरु जी के पास जाकर के गुरु को भी क्या करते थे? प्रणाम करते थे। ये शिक्षा है, अपने आचरण से भगवान ने ये शिक्षा दी कि हमें सुबह उठ करके अपने बड़ों का क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। अगर इंसान इस कलयुग में अगर इंसान इतना शुरू कर दे कि अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सम्मान देना शुरू कर दे, तो कई समस्याएं तो अपने आप निपट जाएंगी। आज स्थिति इतनी भयानक क्यों हो गई है कि लोग बड़ों को, तो जो बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनको घर में रखना नहीं चाहते और ना उनके साथ रहना चाहते हैं। ये समस्या है। अपने माता पिता जो बुजुर्ग हो गए उनके लिए वृद्धाश्रम पूछते हैं, बड़ी विचित्र से। अब जब अपने माता पिता को आप अपने पास रखेंगे नहीं तो प्रणाम किसको करेंगे? तो इससे बड़ी भयानक हो गई। इंसान किससे बड़ी परेशानी यही है कि शिष्टाचार संस्कार धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। और जितने हमारे संस्कार हम खत्म कर रहे हैं इससे क्या है? परेशानी बढ़ती रही, बढ़ती जा रही। तो शिष्टाचार यही है कि हमें सम्मान देना चाहिए, भक्तों का सम्मान भी। जो मंदिर में अगर हम रह रहे हैं तो हमारे जो सीनियर वैष्णव हैं उनका हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। जब फोन करेंगे दंडवत प्रणाम करेंगे, मिलेंगे दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे। सच है नहीं सच है? अरे भाई फोन में दूर में हो चलो दंडवत प्रणाम कर बोल दिया, लेकिन जब मिलो तब तो दंडवत प्रणाम करो एक दूसरे को। पहले होता था, हम लोग तो सबको प्रणाम करते थे। अब हमारे ऐसे ऐसे सन्यासी भी थे कि जब हम लोग वांछा कवितर बोलते थे तो वो लोग भी झुक जाते थे। क्या सदाचार वैष्णव शिष्टाचार था। अबे धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है? नहीं खत्म हो रहा। सेमिनार अच्छा होगा वैष्णव सदाचार, पैसा स्पीच देंगे कि वैष्णव, और जो बड़ा मुश्किल है प्रैक्टिकल करना, है ना, एक अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। भाई शिष्टाचार सिर्फ देने स्पीच देने के लिए नहीं है, खुद करके दिखाने के लिए। ये किसे सीखना? प्रभुपाद जी सीखना। प्रभुपाद जी विदेश गए तो ऐसे नहीं शिक्षा दिए, खुद करके दिखाए। प्रभुपाद जी कितनी विपरीत परिस्थितियों में प्रभुपाद जी ने प्रचार आरंभ किया। वो खुद कुकिंग करते थे, बनाते थे, ठाकुर जी को भोग लगाते थे और जो हिप्पीज थे सबको खिलाते भी थे। और धीरे धीरे अपने प्यार से, प्रेम से, प्रसाद से, हरिनाम से, ज्ञान के द्वारा उनको भक्त बना दिया। प्रैक्टिकल ये बहुत आवश्यक है। तब परिवर्तन हुआ, सब लोग नाच रहे हैं। तब भगवान राम से महान कोई नहीं संसार में, लेकिन महानता विनम्रता से आती है। अगर हमारे अंदर विनम्रता नहीं है तो हम क्या महान है? हम तो सूखे बांस के पेड़ तक तने रहते हैं। इसीलिए बताएगा चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुके होते हैं, जो खोखला होता है वो तना रहता है। भगवान राम विनम्र, ये सबसे बड़ा गुण है। हमारे वैष्णव सदाचार में कुल कितने गुण लिखे गए हैं बताइए? 26 गुण। ये सब याद करने के लिए नहीं है, एक गुण किसके लिए है? अपने जीवन में उतारने के लिए। इसमें विनम्रता, सरलता, मधुरता एक ऐसी चीजें हैं कि कोई भी कर सकता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है ऐसा करना। हमारे प्रभुपाद जी कहा करते थे, जैसे भगवान श्री राम जब राजा रावण को मार करके जब राजा बनने की बात आई, तो भगवान राम ने कहा कि मैं अकेला ही क्यों राजा बनूंगा, हमारे सब भाई राजा जैसे रहेंगे, चारों भाई हम लोग राज करेंगे, सबके से मुकुट होना चाहिए। शिष्टाचार कि जब हम एक साथ खाना खाए, खेले कूदे, पढ़ाई लिखाई सब किया तो राज भी सब मिलजुल करना चाहिए। इसलिए भगवान ने ऐसी सुंदर व्यवस्था की थी, आगे चलकर बताया गया है कि सबको इंगेज कर रखा था, भरत को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को, सबको इंगेज किया था, सब लगे हुए थे राज चलाने में। आजकल स्थिति क्या है? ठीक उसकी उल्टी है। क्योंकि प्रेम शब्द नहीं रह गया है आजकल, प्रेम क्या हो गया है? खत्म हो गया। परिवार में जो प्रेम होता है वो खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया है? क्योंकि हम कृष्ण भावना भावित नहीं है। यही तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक था, अपूर्ण सुखी था। अपूर्ण सुखी इसीलिए था कि हर व्यक्ति उस समय भगवान राम के सामने सारी प्रजा क्या थी? धार्मिक थी। एक ही धर्म था, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर आप रामायण पढ़े तो उसमें बताया गया है कि प्रजा चाहे बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, वो सब किसकी चर्चा करते थे? भगवान राम की लीलाओं का चर्चा करते थे, उनके नाम का जप करते थे, सब राम नाम का जप करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, भगवान की लीलाओं गुणगान करते हैं। वहां पर ताला नहीं लगाया जाता था, सब पूरी प्रजा प्रसन्न थी, क्योंकि कोई चोर था ही नहीं। यहां तो अपने घर में ही चोर बैठे हुए हैं, सजा नहीं से भगवान की घंटी उठा ले जाते हैं, घंटा उठा ले जाते हैं, भगवान की मूर्ति उठा ले जाते हैं, सोने का अखबार में आता नहीं है, है ना? और जो डोनेशन बॉक्स वही उठा के लेके जाते हैं, कोई डर ही नहीं है। एटीएम लगा हुआ है, उसको ब्लास्ट करके उखाड़ के लेके चले जा रहे हैं, है ना? अब आप ताला के अंदर ताला लाकर लगा रखे हैं, सब उठा ले जाते हैं, क्या कर सकते? एक कलयुग है। तो सतयुग का अगर आनंद आप चाहते हैं कि त्रेतायुग की घटना है, लेकिन प्रभुपाद जी स्थापन क्या बताए कि सतयुग जैसा आनंद था। सतयुग जैसा आनंद क्यों था? कि हर व्यक्ति क्या था? धार्मिक था, कोई मांसाहारी नहीं था। आज सब मांसाहारी हैं, शाकाहारी तो ढूंढना पड़ता है, सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है? शाकाहारी में भी आजकल क्या होते हैं, जो अंडे को शाकाहारी अंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन एग्स अंग्रेजी में, और बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई जाती है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, इसका प्रचार किया जाता है। वहीं पे लिख देना चाहिए यमराज मारेंगे डंडे, होर्डिंग लिखना चाहिए यमराज मारेंगे डंडे। तो आप खुद सोचिए कि हम राम राज चाहते हैं लेकिन हम सुधरना नहीं चाहते, हम धार्मिक नहीं बनना चाहते, हम गीता नहीं पढ़ना चाहते, हम रामचरितमानस का पाठ नहीं करना चाहते, बिल्कुल जीवन में अपनाना नहीं चाहते, लेकिन चाहते सब कुछ है कि राम राज्य चाहिए। इसलिए जो वर्तमान के राजा हैं पहले उनको सुधरना चाहिए। राजा अगर धार्मिक होगा तभी प्रजा क्या हो जाएगी, धार्मिक बनेगी। तो अयोध्या में उस समय जब भगवान राम राजा थे तो पूरे लोग क्या थे, धार्मिक प्रभाव स्वभाव के थे, धर्म के अनुसार सब जीवन चलाते थे, तब आनंद था। तो यदि इंसान इस कलयुग में आनंद चाहता है और कलयुग में शतयुग जैसा आनंद चाहता है तो प्रभुपाद जी तात्पर्य क्या कहते हैं, उसको क्या बनना पड़ेगा, कृष्ण भावना भावित बनना पड़ेगा। तो आप वो आनंद ले सकते हैं। अब आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना करके कम के इस्कॉन के कैंपस के अंदर इन्वायरमेंट तो क्रिएट कर ही दिया है शतयुग जगान। सुबह से लेकर के शाम तक का जो एंगेजमेंट जो कार्यक्रम है किससे रिलेटेड है, भगवान से रिलेटेड है, आप जान लीजिए। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम इस कलयुग में रह करके भी सत्युग का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि हम क्या हैं, धर्म के अनुसार जीवन जीने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उनसे तो अच्छे हैं जो प्रयास भी नहीं करते, कम से कम नशा मुक्त तो हो गए हैं, लेसुन प्यार तो छूट गया है, यही आनंद है। हमारे भक्त को कोई टेंशन नहीं था, सुबह 3:30 को उठते हैं क्योंकि यही हमारा वैदिक समय है उठने का। प्रभुपाद जी ने इसलिए हर इस्कॉन का हर मंदिर क्या है, वृंदावन धाम जैसा है, आनंद देने वाला है, आनंद का आगार है, आनंद का घर है। बस आनंद लेना हमें क्या होना चाहिए, आना चाहिए, और उसके लिए जो सिस्टम प्रभुपाद जी बनाया है हमें उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तब हम कलयुग में सत्य का आनंद लेंगे कृष्ण भावना भावित बन करके। इसीलिए नित्यम भागवत सेवया, और उस अयोध्या में यही होता था, सब लोग भगवान की लीलाओं का गुणगान करते थे, चर्चा जहां बढ़ जाते थे सब भगवान की चर्चा होती थी, अब आपस में प्रेम रखते थे, छुपाने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि उस युग में कोई किसी से ईर्ष्या करता ही नहीं था, क्योंकि ईर्ष्या क्रोध लोभ काम ये सब नरक द्वार है, था ही नहीं। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए तो ये था ही नहीं, और यहां तो ईर्ष्या कूट कूट करके भरा हुआ है लोगों में, अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। और जब तक आप अहंकार भीन नहीं होंगे, क्रोध भीन नहीं होंगे, भूल जाए कि भगवान कृपा हमको मिल जाएगी, कि भगवान ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। तो भक्त का सबसे बड़ा यही गुण है, अहंकार रहित, जीरो टॉलरेंस, क्रोध रहित, लेकिन बामुश्किल है। कभी कभी आप गाड़ी चलाते हो, आप सही चला रहे हो लेकिन दूसरा गलत चला के आपको ठोक देता है, होता ही नहीं ऐसा। इस संसार की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि अगर आप बोलोगे तो संसार के लोग क्या बोलेंगे, देखो एक कितना अहंकारी है, बहुत बोलता है। और नहीं बोलोगे, चुप हो जाओ, कि देखो इसका अहंकार, देखो बोलता ही नहीं, बोलते ही नहीं, इतना अहंकार हो गया है कि बोलता है, माने बोलो तब भी नहीं छोड़ेंगे और नहीं बोलोगे तब भी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया बड़ी विचित्र है। प्रभुपाद जी इसीलिए बोलते थे कि हमारे भक्तों को हाथी की तरह चलना चाहिए। हाथी जाए बाजार, कुत्ते भौंके हजार। जब हाथी जाता है तो कुत्ते कितना भौंकते हैं, लेकिन हाथी पर उसका असर नहीं पड़ता, वो अपने मस्ती में चली जाती है। इसलिए हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हमें अपनी भक्ति में अपने सेवा में लगे रहना चाहिए। अब दुनिया हमारे बारे में क्या कहते क्या सोचते ये उसका टेंशन है, हम क्यों टेंशन में रहें। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हरे कृष्णा आंदोलन जो भक्त है अपना कीर्तन भजन प्रवचन सब में लगे रहे, स्वयं लगे रहे, दूसरा क्या सोच रहा है क्या करके भाड़ में जाए, कुत्ते जैसे हैं। तब प्रभुपाद बोला था कि हाथी जाए बाजार, कुत्ते भूके हजार। क्योंकि आदत है तो भूकेंगे भूकेंगे, उनका कोई काम नहीं है, आपको क्या लेना देन से। तो अगर आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो दूसरा क्या सोचता है क्या कहता है कहने दो भैया, क्या जाएगा, है ना। आप तो सही हो क्योंकि भगवान उसको भी देख रहे हैं और तुम्हें भी देख रहे हैं। भगवान पर हमें विश्वास करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमारे भक्तों को बहुत सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ये वही संसार है जिसने भगवान राम को नहीं छोड़ा, दोष लगाया, भगवान कृष्ण को भी चोरी का इल्जाम लगाया। तो जब ये संसार इतना विचित्र है यहाँ के लोग कि जब कृष्ण को राम को नहीं छोड़ सकते तो हम लोग किस खेत की मूलेंगे, वो तो कहेंगे कहेंगे, तो हमें इसका केयर नहीं करना चाहिए। उसी तरह से जैसे हाथी कुत्तों का केयर नहीं करती। तो ये जितने ईर्ष्यालु लोग हैं देखते हैं बुरा, करने दो, है ना, क्या जाना, क्योंकि आजकल ना ये मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है कि यू हैव नो टेंशन, दिस टाइप ऑफ पीपल से क्रिएट द टेंशन। वो जानबूझ के ऐसी बात बोलेंगे तो आपके टेंशन में आ जाओ, तो उनका अगर आप टेंशन नहीं होगे ना तब उनको असर नहीं पड़ेगा, अगर टेंशन में आ गया तो खुश होंगे, देखो टेंशन में आ गए, क्यों बोलते हैं इसलिए भाई, देयर इज नो टेंशन दे क्रिएट द टेंशन, आप समझ, क्योंकि उनका मकसद पूरा होता। तो आज का मेंटल लड़ाई ज्यादा होती है, तो को जब चतुर लोग होते हैं वैसे नहीं लड़ेंगे, लेकिन ऐसी बात करेंगे, कहते हैं ना टांट कसना, ऐसी बात बोल देंगे कि जब भी आप उसकी बात को याद करो और टेंशन में आ जाओगे, ये उनका मकसद पूरा हो जाता है कि दे वांट टू क्रिएट द टेंशन इन योर माइंड। सारा टेंशन किसके लिए, माइंड के लिए। प्रभुपाद जी कितनी तकलीफ दिया लोगों ने, कितने टेंशन थे। प्रभुपाद जी के गुरु भाई प्रभुपाद जी से कितना ईर्ष्या करते थे पता ही नहीं पता, प्रभुपाद जी अपने गुरु भाइयों से भी परेशान थे। इस संसार बड़े विचित्र है, आप अच्छा रहोगे बन के देखो तो आप पता चलेगा कि पग पग पर लोग जो हैं खींचने वाले हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, इन सब से विचलित नहीं होना चाहिए। वो अपना काम करें और हम अपना काम करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। यदि आप सतयुग चाहते हैं तो भगवान अपने व्यवहार से गुणों से त्रेता युग सती बना दिया था। अब प्रभुपाद जी करें कि कलयुग को भी हम सतयुग बना सकते हैं हरिनाम के द्वारा, अकृष्ट भाना भावित होकर के। ये संस्था प्रभुपाद जी ने इसीलिए बनाई है, तो हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को आचरण में ढालें, ये बहुत आवश्यक। हमारा भी आचरण बहुत ही यूनिक होना चाहिए, है ना। सिर्फ वैष्णव तिलक कंठी माला, गले में माला लटकाने कुछ नहीं होता, क्योंकि लोग आपका आचरण देखते हैं कि आप बोलते कैसे हो। भक्त का जो का भगवान राम का सबसे बड़ा एक गुण है, हर गुण अपने आप में कम्पिटिटिव है। विनम्रता है तो विनय के सागर, भगवान के अंदर दयालुता दया का सागर कहा जाता है, दया के सागर है, तो भगवान से कुछ तुलना कर ही नहीं सकता किसी चीज, क्योंकि हर गुण भगवान का है। लेकिन मृदुभाषी, मधुर बोलना बहुत ही आवश्यक है। आज जितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, टेंशन है, सिर्फ किससे हो रहे हैं? जिह्वा से। किसी को अपनी जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है। मृदुभाषी भगवान जब भी बोलते थे राम की, ये सबसे बड़ी खासियत, क्योंकि प्रेम का जो प्रतीक होता है, प्रेम का प्रतीक किससे शुरुआत होता है कौन बताएगा? मनी बारे हम बताया था, बताइए आप लोग, बताइए ना, बोलते क्यों भगवान, हम जब पूछे बोलना चाहिए। प्रेम की शुरुआत किससे होती है कौन बताएगा? हाँ भैया, दृष्टि से प्यार होता है, देख करके पहली बार। आप सुन, इसका मतलब कि आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो नहीं, सास की बात बता दूं कि दृष्टि, नेत्रों से प्रेम की क्या होती है? शुरुआत होती है। भगवान राम पहली बार सीता जी को जब देखा पुष्प वाटिका में, पहली बार दोनों के नयन मिले थे। तो सास कहता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, सास में बताया गया है कि प्रेम की जो शुरुआत होती है किससे होती है? दृष्टि से होती है, नेत्रों से होती है। आप सुन, आप कहीं जा रहे हो, नजर मिल गई, शुरुआत वहीं से हो जाती है। होता क्या है कि ये प्रेम का प्रतीक है। दृष्टि कई प्रकार की बताई गई है शास्त्रों में। पहली होती है प्रेम की दृष्टि, और दूसरी होती है नफरत की दृष्टि। कहते हैं बड़ा नफरत से देखता है, ये भी दृष्टि है। आप किसको किस दृष्टि से देखते हैं, ये आदमी तुरंत जज कर लेता है। ईर्ष्या की दृष्टि अलग होती है, है ना? अच्छा, ईर्ष्या थी आ गई, वो देख लेना आंख से विचार कर रहे, देखने नहीं चाहते। तो प्यार की दृष्टि, नफरत की दृष्टि, ईर्ष्या की दृष्टि, है ना? इस दृष्टि के प्रकार है। तो हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए? प्रेम की दृष्टि होती है। अब प्रेम कई प्रकार का होता है, लोगों को पता ही नहीं। अपने परिवार में अगर सुर गए तो प्रेम के कितने प्रकार होते हैं, और कल्पना, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सोचिए सर, कि किसी ने विचार किया पिता के प्रति जो प्रेम होता है अलग होता है, माँ के प्रति जो प्रेम होता है अलग होता है, भाई और बहन के बीच का प्रेम अलग होता है, नाना नानी के प्रति प्रेम अलग होता है, जो रिश्ते हैं उसकी बता, सबका प्रेम एक ही होता है, लेकिन प्रेम की वैरायटी अलग होता है, है ना? प्रेमिका के साथ प्रेम अलग होता है, पत्नी के साथ प्रेम अलग होता है, लेकिन होता है। प्रेम के कितने प्रकार हैं आप सोचने से। भाई भाई का प्रेम जो इतने परिवर्तन, प्रेम एक ही है लेकिन उसके प्रकार कितने हैं, कभी सोचा? इसी की समस्या है आज सारी समस्या। लेकिन भगवान सबको एक ही दृष्टि देखते थे, प्रेम की दृष्टि से। लेकिन भगवान की देखने की शक्ति प्रकार जानते थे कि माँ को किस दृष्टि, माँ को भी प्यार से ही देखना है। लेकिन माँ के प्रति जब हम नजर डालते हैं तो प्यार कितना, नजर की अंतर होता प्रकार, ये दृष्टि से आर्ट, हमको पता ही नहीं इस चीज का। जब बहन के देखेंगे, है ना, तो हमारी दृष्टि अलग होगी। लेकिन जब दूसरी लड़की भी देखते हैं, नजर बदल जाती है। यही प्रकार है कि हम किस तरह से रिश्ते में, भगवान सबको प्रेम से ही दृष्टि देखते हैं, किसी से नफरत दृष्टि कभी देखा ही नहीं। लेकिन उनको मानता है कि किसको किस दृष्टि प्रेम की होगी, लेकिन प्रेम के प्रकार, फीलिंग अलग अलग होती। ये भगवान की महारथ है। इसीलिए भगवान जब भी जिसको जिस नजर से देखते थे, प्रेम नजर से देखते थे, लेकिन वो अपनापन होता था। यही कला कृष्ण के पास थी, क्योंकि जब देखते थे तो बताते यशोदा मैया का खुद जूत दूध बाहर निकल आता था पिलाने के, कि माँ की दृष्टि है, भगवान भगवान है। तो ये नजर जैसे कहते दृष्टि का सारा खेल क्या है, दृष्टि का है। क्या आपकी दृष्टि कैसे, इसको यूटिलाइज करना भी एक क्या है, कला है। क्रोध की दृष्टि, आदमी जब क्रोध करते हैं आंखें क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। आंख वही होती है लेकिन दृष्टि बदल जाती है। ये कला भगवान। दूसरा स्थान आता है हाउ टू यूटिलाइज ऑल दिस थिंग, यही तो कला है, ये को हमको सीखना पड़ेगा। तो पहला कि आप जिसको भी देखिए आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, प्रेम की नजर से देखे, दृष्टि देखे, लेकिन प्रेम क्या होना चाहिए, गलत नहीं होना। जिसके साथ कैसे करना चाहिए, इसमें आपको मार चल रहा। भगवान राम इस तो सबको देखते प्रेम से ही थे, लेकिन उसका भाव सबका अलग अलग होता था, यह आप जान लीजिए। लेकिन दृष्टि प्रेम की होनी चाहिए। आज इसकी इतनी कमी है, इसलिए तो हर इंसान परेशान है। उसके बाद तब दूसरा स्थान आता है किसका, वाणी का। संबंध बनाने के लिए पहला स्थान किसका है, दृष्टि का, और दूसरा स्थान किसका आता है, वाणी का। वाचो बेगा मनुष्य क्रोध जिह्वा बेगम उदर उपस्थ, वाणी का बेगम। एक किसे सीखना, भगवान राम से, मृदुभाषी मधुरभाषी। कि भगवान जब बोलते थे अब शब्द नहीं कि आप कैसे वर्णन करें, जब भगवान बोलते थे। आप वो प्रसंग याद करिए जब परशुराम और लक्ष्मण से संवाद हो रहा है, एक लक्ष्मण तेज तर्रार, अब परशुराम भी कम नहीं, और दोनों भिड़ रहे थे, लेकिन भगवान विनम्रता की मूर्ति, बड़े विनम्र भाव से जब बोलते थे तो बड़े मधुर भाषा में, उनका क्रोध इतना क्रोध था परशुराम जी का, लेकिन जब भगवान अपनी वाणी से मधुर वाणी से बोलते थे संबंध। इसीलिए अच्छे इंसान को आगे वाला कितना भी गर्म हो कुटे, लेकिन आपको वैष्णव को तो बढ़िया से, ये नहीं कि फिर आप में उसमें अंतर क्या है, आप भी गाली वो भी गाली वो भी, तो अंतर ही क्या है फिर, तब तिलक लग से पहुंच देना चाहिए, है ना, क्या फायदा फिर। आपकी वाणी में अगर मधुरता नहीं है, आप वही जैसे वो गाल दे वो आप भी गाल। इसीलिए आप किसी भी फाइव स्टार होटल के रिसेप्शन पर जाए, जब बड़े लोग होते हैं एयर होस्टेस के पास, उनको यही सिखाया जाता है, यही ट्रेनिंग दी जाती है कि जो कस्टमर है कितना भी चिल्लाए चीखे लड़ाई का झगड़ा, आपको मुस्कुराना है और मधुर वाणी बोलना है, आप अपनी लाइन को नहीं भूलेंगे। इसी का उसको पैसा दे जाते, और हमें तो पैसा इसके देने जरूरत नहीं, हमें तो हम तो वैष्णव ही टिकट, यही बताया गया मधुर भाषी होनी चाहिए। आप समझे, इसी चीज की कमी है। आज क्यों हर इंसान परेशान है, अपने घर में ही परेशान है, अपने लोगों से परेशान है, भाषा की वजह से, कि बोलने का कोई ढंग ही नहीं है। छोटी छोटी बात पे गाली गलौज होती, पति पत्नी के बीच है ना, भाई भाई के बीच, बहन भाई के बीच, जैसा सब जगह लड़ाई झगड़ा चल रहा है, छोटी छोटी बात पर ऐसा गुस्सा कर रहे हैं, ये क्या है ये, क्योंकि धार्मिक नहीं है। भगवान राम ने जो शिक्षा दी है उसको अपनाने का कोई सोचता ही नहीं, इसलिए हर इंसान अपने घर में रहकर क्या है, परेशान है। दो मुर्गी है लड़ रही आपस में, उसकी परेशानी यही है कि अपने जीवा पर कोई कंट्रोल नहीं है। वाणी मृदुभाषी बनो, तो प्रभुपाद जी बोला करते थे कि वो व्यक्ति अगर किसी को दो मीठे बोल नहीं दे सकता, वह क्या दे सकता है, क्योंकि मीठा बोलने में तो कुछ लगता नहीं है, मीठा बोलने में कुछ नहीं लगता है, मीठा बोल करके देखो। ये भगवान राम से सीखना चाहिए, एक क्वालिटी है भगवान कर दिखा। परशुराम कितना गुस्सा करे लेकिन भगवान जब बोलते हैं मधुर भाषा, ऐसे रावण तक को भगवान ने मार डाला लेकिन भगवान ने गाली नहीं दी। सोचने वाली बात, उनकी पत्नी का हरण कर लिया है ने, लेकिन भगवान कितने धैर्य के साथ किसी मर्यादित ढंग से वो रावण तक पहुंचे, लेकिन कहीं भी उन्होंने विचलित नहीं रहे, न बहुत क्रोध हुए, न चीखे न चिल्लाए और अपशब्द तक नहीं बोला। हम लोग छोटी छोटी सी बात में भिड़ जाते हैं अच्छी तरह से, गाली गलौज मारपीट सब कर लेते हैं। तो इसलिए इंसान क्यों परेशान है, पूरा विश्व में लोग क्यों परेशान है कि इन ग्रंथों को पढ़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं और अपने जीवन में उतार नहीं रहे हैं। ये रामलीला करने वाले दिखने वाले कोई फायदा नहीं है अगर आप इन गुणों को अपने जीवन में उतारते नहीं है, गएंगे गोलगप्पे चाट पकौड़ा खाकर चले आएंगे रात में, यही होता है आजकल रामलीला में, झूला झूल के चले हैं, बच्चे लोग का झूला झूला, कोई वहां बैठता नहीं। हम देखते हैं, मैं गया था लोकुश राम, दो तीन जो प्रतिष्ठित हैं लोग बड़ा बुलाते हैं, वहां कोई बैठ नहीं थे, 10 मिनट हाजिर लगा करके खाने पीने में सब लग जाएंगे, झूला झूलने लग जाते, भगवान क्या बोल रहे हैं, डायलॉग क्या हो रहा है, कोई आश्रय नहीं, कोई मतलब नहीं इन सब, मन ही नहीं लगता। देखिए हमारे भक्तों को, हम सबके बहुत बड़ी जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि हमें अपना सदाचार आचरण बहुत ही आवश्यक है। मृदुभाषी विनम्रता, भगवान की विनम्रता देखिए कि जब राजा बने तो अपनी प्रजा के बीच में जाते थे, प्रजा के पहले ही प्रणाम कर लेते थे। यहां तो हम देखते रहते हैं कोई प्रणाम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, टेंशन में आ जाते हैं अगर किसी कोई बिना प्रणाम के निकल गया तो, हम बैठे रहते हैं ना प्रणाम करें, अरे यही तो अहंकार है। भगवान राम से तुम बड़े नहीं हो, वो ये थोड़ी इंतजार करते कि हम राजा हैं प्रजा के मेरा चरण छुए प्रणाम कर, ना ना भगवान पहले प्रणाम कर लेते, यही तो महानता है, तभी तो सबके हृदय में बसे हुए थे। अपनी प्रजा के हृदय में भगवान राम इतने रम गए थे कि प्रजा राम के बिना रह नहीं सकती थी, आप जान इन्हीं गुणों के कारण, यही तो गुण है कि भगवान भेदभाव नहीं करते थे। सबरी ने झूठे बैर दिया चक करके, अब भगवान प्रेम से खाए, भगवान भाव देखते हैं आपकी भावना कैसी है। तो ऐसे कहानी से सुनने के लिए कथा नहीं है, सबरी कथा है कथा, अरे ये जीवन में उतारने के लिए इन गुणों को आत्मसात करना है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश तो हैं हम, ये हम मानते हैं, लेकिन जो गुण है उसे भी तो आत्मसात करना चाहिए, उसको तो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आप प्रभुपाद जी क्यों सफल हुए, क्योंकि प्रभुपाद जी इसीलिए सफल हुए कि अपने आचरण से वो क्या करते थे, प्रचार करते। हमें भी भक्तों को भी इसी प्रकार से अपना आचरण व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए। ऐ जो राम की लीलाएं चल रही हैं, अभी विजयदशमी आने वाली है, इन गुणों को हम पढ़ें समझें। वास्तव में सुखदेव गोस्वामी जी ने परिचित महाराज को कथा सुनाने से पहले बोल दिया कि हे परिचित महाराज, आपने तो भगवान की लीलाओं को बहुत सुना है, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में आपको सुना रहा हूं, ऐसा कहा। अब तब बड़ा संक्षेप में सुना है, लेकिन सुनाया उन्होंने, भगवान राम की लीला है ही ऐसी। चेतन महाप्रभु खुद रामलीला करते थे अपनी मंडली के साथ, है ना, एक बार ऐसे लीला चल रही थी, नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण बने थे, है ना, और चैतन महाप्रभु राम बने थे। और लीला थी कि लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई, एक कोई है वो हनुमान जी बने थे, है ना। तो जब लक्ष्मण जी को मूर्छित हो गए तो राम रोने लगे, चैतन्य महाप्रभु रोने लगे, है ना, और रोते चले गए कि जो हनुमान बोला था वो भूल गया कि हनुमान है, वो भी रोने लगा। अब लक्ष्मण जी कैसे उठे, अब नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के रूप में भाई तभी उठे, हनुमान जी बूटी लेके आए गए, और जो हनुमान जी बोले थे वो बूटी लाले भूल गए। तो बड़ी तक तक लीला चलती रही, तो कहे भाई हनुमान जी तो भाई बूटी लेके आए ही नहीं, तो कैसे उठेंगे लक्ष्मण जी। तो जो हनुमान बोला था वो भूल गया था, तो अरे हनुमान तो मैं ही बोला हूँ, तब दौड़ के अब जड़ी बूटी संजनी वो लेके आया, तब हनुमान जी खड़े। तो चैतन्य महाप्रभु खुद लीला करते थे भगवान राम की, सारे ब्रजवासी लीला करते थे, क्योंकि त्रेता युग की लीला है, द्वापर में सब तब से त्रेता युग से लीला चली आ रही है, और जब तक धरती रहेगी तब तक रामलीला रहेगी, राम कथा होती रहेगी, और हनुमान जी रहेंगे। हनुमान जी के वरदान भगवान दिया है कि जब तक कि धरती पर राम कथा होगी हनुमान जी आप तब तक रहेंगे धरती पर। इसलिए हनुमान जी क्या है, अमर है। और हनुमान जी को हमारे वैष्णव इस काम में क्या माना जाए, दास श्रमणी, हनुमान जी हमारे दास श्रमण के, है ना। तो ऐसे दास में हनुमान जी के से प्रार्थना करना चाहिए हम सबको कि जिस तरह से उन्होंने भगवान के चरणों में परमानेंट अपना स्थान बना लिया है, हमारे पर कृपा करें तो हम भी भगवान के चरणों में सेवा करते रहें। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? लीलाएं तो बहुत है, लेकिन बोले प्रभु जी,
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जैसा आपने बताया हम लोग रामलीला करते हैं, या हमारे यहाँ मंदिर की व्यवस्था, यहाँ पर भगवत गीता में प्रवचन दिया जाता है, भागवतम पे दिया जाता है, या हम संकीर्तन करने भी बाहर जाते हैं, लोगों को मौका मिलता है हरिनाम संकीर्तन सुनने का, लेकिन लोग इसका लाभ क्यों नहीं उठा पाते। हम देखते हैं कि कई लोग दर्शन करने भी आते हैं लेकिन वो उनकी श्रवण में रुचि नहीं रहती है, तो हम कैसे प्रयास कर सकते हैं कि वो हमारा संघ का लाभ उठाएं, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का लाभ उठाएं।
प्रभुपाद जी ने श्रवण पर ज्यादा जोर दिया है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी प्रवचन दे रहे थे तो प्रभुपाद जी बैठे थे, उसी समय पट खुला तो जितने लोग बैठे थे सब दर्शन करने चले गए, जबकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रवचन दे रहे, कथा सुना रहे थे। तो जब वो लोग सब वापस आए, लेकिन प्रभुपाद जी नहीं गए, प्रभुपाद सुनते रहे, बैठे रहे अकेले प्रभुपाद जी। तो जो लोग सब आ गए तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि आपने आई एक्सरसाइज आंख का अभ्यास करके आ गए कि जब भगवान की कथा हो रही है तो सबसे हमें कथा सुनना चाहिए, क्योंकि भक्ति की जो प्रथम सीढ़ी है वो किससे होती है, श्रवण से, क्योंकि जो सुनता है वही सुधरता है और जो सुनेगा ही नहीं सुधरेगा कैसे। इसीलिए प्रभु भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि अगर कथा चल रही है तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, उससे हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, तब हम भगवान का अच्छा से दर्शन कर पाएंगे। तो ये समझाना हमारा कर्तव्य है। हाँ बोले माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ बोले माता।
नवरात्रे माता रानी के रखे जाते हैं और लीला राम जी की होती है, रामलीला होती है, तो ऐसा ये क्या है? ये
जो नौ दिन होता है ये दुर्गा जी के लिए है, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित भक्त हैं है ना, वो उनके लिए हर दिन नवरात्र है। प्रभुपाद जी कहते थे कि अभी जो नवरात्र का व्रत करने वाले लोग हैं उनसे आप पूछें तो आप देखेंगे इस समय कोई लहसुन प्याज नहीं, दारू नहीं, कोई नहीं पिएगा, लेकिन दसवें दिन सब कमी पूरी कर देंगे,
सब शुरू कर देंगे,
क्योंकि इनकी जो भक्ति होती है टेम्परेरी है, नौ दिन की भक्ति है, नौ दिन का त्याग है। लेकिन यहाँ तो जो हरे कृष्ण आंदोलन में तो हर दिन त्याग है, क्योंकि हमारे लिए हर दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, तुम्हारी भक्ति हर दिन के लिए होती है। आप समझिए, ये सब टेम्परेरी लोग हैं, ये बस नौ दिन तक को जाएंगे, उसके बाद दसवें दिन से फिर अपने पुराने ढर्रे में चले जाएंगे। तो हमें ऐसी नौदा भक्ति, नौ दिन की भक्ति नहीं चाहिए। दुर्गा जो है योग माया है, क्योंकि भगवान कृष्ण की सेवा में उनको लगाया गया था। तो भगवान ने बोला है कि अगर तुम मेरी इस सेवा करोगी तो तुम्हें लोग 14 नामों से लोग जानेंगे। तो दुर्गा भी एक नाम है योग माया का। जब भगवान की आउटर एनर्जी है तो बताया गया है, तो दुर्गा भगवान की शक्ति है, भगवान क्या शक्तिमान, तो ये शक्ति की पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये लोग यही जानते कि शक्तिमान की शक्ति होती है, तो नौ दिन का नहीं, हमें हर दिन हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हर दिन हमें लहसुन प्याज से बचना चाहिए, मदिरा नशा से सबसे बचना चाहिए। ये लोग किसी नौ दिन के हैं, नौ दिन तक कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन दसवें दिन सब पूरी कर जाएंगे। तो उसी प्रकार से है, हमारे प्रभुपाद बोला करते हैं, जैसे हाथी स्नान करता है नदी में, जब बाहर आता है सारी मिट्टी फिर पुन डाल लेता है, तो ऐसे लोग हैं। नौ दिन तो कुछ नहीं खाएंगे और दसवें दिन सब खा जाएंगे, तो सारा पाप फिर पूर्ण पाप में बदल जाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये बहुत आवश्यक है। इन्हें कि दुर्गा जी अगर कोई इनवाइट करता है, आप जाए दुर्गा जी का दर्शन करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति, वो भी एक शक्ति है, भगवान के अंडर में काम करती है, भगवान के निर्देशन पे कार्य करती है, तो कोई दिक्कत नहीं। देवी देवताओं को हमें सम्मान देना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नाम किसका लेना है? भगवान का, कृष्ण का, वो हमारे केंद्र में होने चाहिए, ये बहुत आवश्यक। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। थैंक यू जी, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। जैसे आप बता रहे थे कि प्रभुपाद जी का वो सिद्धांत, जैसे हाथी और कुत्तों के बीच की एनालॉजी, तो इसे जस्ट स्मरण आ रहा था कि कोई प्रभुपाद ने जैसे ये ऐसा नहीं कि ऐसा ही कुछ बोला, लेकिन जैसे रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि मध्यम अधिकारी जो भक्त होते हैं वो ईर्ष्यालु लोगों से उपेक्षा करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं और भक्तों से मैत्रीभाव बनाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो ये उपेक्षा मतलब उनसे दूरी बनाए रखते हैं, कि तभी प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला कि हम जो है उनकी फिक्र नहीं करते जो हमारे से एनवीएस हैं, और जो भक्त हैं उनको भक्ति का प्रचार करेंगे, जो श्रद्धालु भक्त हैं उनको कृष्ण भावनामृत प्रचार करते हैं।
वही बात कि हमें इनका नहीं क्या करना है, कि हमें क्या देता है, हमें हरिनाम देना है, अब हमसे साथ जुड़ते चले जाएंगे अपने आप, कोई दिक्कत थोड़ी है इससे। लेकिन हम उनके वजह से हम टेंशन में आ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें टेंशन है, हमें उनका टेंशन तो नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे विदेशों में, चाहे हिप्पी लोग थे, नशा करते थे, फिर भी प्रभुपाद जी उनको माला पकड़ाते थे, कि प्रभुपाद जानते थे यही इनकी क्या है दवाई है। जैसे पीलिया के मरीज को गन्ने का जूस पिलाया जाता है, तो प्रभुपाद बोलते थे गन्ने का जूस जो है उससे नुकसानदायक है, लेकिन पीलिया की दवाई है ये, क्या किया जाए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी हर नाम देकर जानते थे कि भाई हमने नशा करा छोड़ा नहीं है, लेकिन हमको सुधारने के लिए वो दवा देनी पड़ेगी, वो धीरे धीरे अपने आप छोड़ देगा, भावनाएं होती। ठीक। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, श्रीमद भागवतम की जय। गौर प्रबंध
की जय।
जब लीलाएं हो रही थी ना, तो सीता जी खुद दुर्गा जी की पूजा करने जाती थी, जब उनकी शादी, क्योंकि तब शंकर पार्वती जो होती है इनका, दुर्गा जो भी शुरू से चले आ रहे हैं, तो पहले श्लोक पूजा करते हैं।